नारी जो स्त्री है वो बिना ही परिश्रम परम गति वो प्राप्त हो जाती है। क्या कारण से है कि छल का त्याग करके फिर पातिव्रत धर्म के धारण करने से ऐसी जो पतिव्रता स्त्री होती है वो उत्कोटी की वो कभी दूसरे पुरुष को स्वप्न में भी याद नहीं करती। पातिव्रत धर्म के में ये बात प्रधान है ब्रह्मचर्य पालन प्रकाश से जोर दिया गया है। उत्तम के ऐसे बस मन मांगी और सपने उपाने पुरस जगनाई पतिव्रता स्त्री के हृदय की भी किरमा उत्कोटि की जो एक नंबर जो पतिव्रता होती है उसके हृदय में पति प्रकाश से बात करता है कि ऐसा उनके चित्त में भाव रहता है कि मेरे पति को छोड़कर के दुनिया में कोई दूसरा पुरुष है ही माने पुरुष है तो मेरा पति है और भी कोई दुनिया में पुरुष है इस तो उसके ज्ञान ही नहीं रहता। किन्तु दूसरे नंबर की जो पतिव्रता है मध्यम श्रेणी की जिसकी श्रेणी की उसकी दृष्टि दूसरे पुरुषों पर चली जाती है किन्तु वो किस प्रकार से पुरुषों को देखती है उसके लिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मध्यम पर पति देखी कैसे पिता पुत्र निज जैसे मध्यम श्रेणी की बीच की श्रेणी के स्त्रियां दूसरे पुरुषों को देखते किस प्रकार से देखती है कि जैसे अपना जो निजी जो सहोदर भाई है इस प्रकार से अपने खास पिता के समान अपने जन्मे पुत्र के समान जो छोटे हैं उसको तो अपने पुत्र के समान और जो बड़े हैं उसको अपने पिता के समान समान प्रसवाल उसको भाई के समान इस प्रकार से देखती वो भी तो पति बढ़ता ही। और वो ऐसी जो स्त्री है वो अपने पत्नी का अपमान और तो कभी करती ही नहीं पर जो नारी एक प्रकार से ऐसा नहीं कर कर करके की और पति का हुक्म नहीं मान करके मन माफी चलती है समझा पति का हुक्म नहीं मान कर देती तो वो दूसरे जन्म में छोटी अवस्था में विधवा हो गया। ये छोटी अवस्था में बहुत से स्त्रियां विधवा क्यों होती तो पूर्व जन्म के पाप के कारण तो कौन सा पाप है इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि पति प्रतिकूल है जन्म जह जाई विधवा हो ये पाय तरुणाई जो स्त्री पति को हुक्म नहीं मानती है और उसके मन के विरुद्ध चलती है वो दूसरे दिन में जब उसकी तरुणावस्था हो जाती है जवानावस्था हो जाती है तब वो विधवा हो जाती है। प्रकाश से थी और जो स्त्री दूसरे पुरुषों के साथ में भोग विलास करती है व्यवचार करती है उसकी क्या गति होती है बोले उसकी तो पूछे ही मत उसके लिए तो बहुत ही खराब गति होती है। उसके लिए तो कह है पति बांचक पर पति रति करेगी गौरव नारक कल्प सप पर नारी अपने पति को धोखा देकर के मन छिप कर करके और दूसरे पति के साथ भोग करती है बढ़कर के रोरम नाम के नरक के बीच के वहां 100 कल्प वास करती, तो ख्याल करना चाहिए कि लाखों करोड़ों वर्षों वास करती है एक छोटे से पाप के कारण, तो कितने मूर्खता की बात। इसी प्रकार से जैसे स्त्री के लिए पाप बन रहा है, ऐसे पुरुषों को भी अपने धर्म पर रहना चाहिए। जो पुरुष भी अपने स्त्री को छोड़कर के पर स्त्री में गमन करता है, विषय वो करता है, वो भी इसी प्रकार से घोर नरक में पड़ता है, परंतु ज्यादा पापी स्त्री से बढ़ करके पापी। इसी प्रकार से जो स्त्री अपने पति को अपमान कर देती है वो भी नरक में जाती है। पति कैसा ही क्यों नहीं हो, उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए। वृद्ध रोग बस जग धन अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति कर किए अपमान, नारी पाव जम पूरे दुख नाना, ऐसे वो पति कर किए अपमाना। इस प्रकार का गुणहीन जो पति है, ऐसा जो एक प्रकार से अंगहीन गुणहीन ऐसा भी जो पति है, उसका भी कोई स्त्री अपमान करती है तो जमपुर में जाकर के नाना प्रकार के दुख भोगती है। और जो समझो कि अच्छा पति है, सब प्रकार से अपनी सेवा अपने समझो कि अपनों को सुख पहुंचाता है, उसकी जो बेइज्जती करे वो दुर्गति को पा, उसमें कारण क्या है, तो कैसा कि उसके ये अवगुण बताए कि इतने अवगुण होने पर भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो अवगुण होने पर अभिमान ला करके अपमान कर देती है स्त्री। अवगुण क्या कि बूढ़ा हो जावे तो उस वृद्धावस्था के मान उसको अपमान नहीं करे। रोग बस कोई प्रकार का रोगी होगा तभी ऐसा नहीं करे, और जड़ माने मूर्ख हुए तो भी नहीं करे, और धनहीन हुए तो भी उसको अपमान नहीं करे, आंखों से अंधा हुए तो भी ऐसा मैं को अपमान नहीं करे कि मनुष्य अंध हो सके कोई बस की बात तो नहीं, सुनना बंद हो जाए बैर हो जाए तो भी मैं को अपमान नहीं करे, पर क्रोध की मूर्ति हो तो भी मैं को अपमान नहीं करे, और अति दीन मलीन हुए कमाने की शक्ति नहीं हुए तो मैं को अपमान नहीं करे, ऐसा अवगुण हो तब भी अपमान नहीं करे। इसी प्रकार से तीस शास्त्रों के बीच के मां पुरुषों के लिए बतला है, पुरुषों का भी यह कर्तव्य है कि अपने स्त्री में ऐसे दोष आ जावे तो मैं को कभी अपमान नहीं करे। कोई कोई जो पुरुष है वो अपने स्त्रियों को गालियां देता है तो वो घोर नरक को जाता है। स्वाभाविक ही एक स्त्री को कह देता है रांड, तो ये असत वचन है, और झूठ बोलने से महाराज युधिष्ठिर को भी काल्पनिक नरक का दर्शन करना पड़ा। जो रात दिन जो झूठ बोलते हैं उनकी क्या गति होगी, भगवान ही जाने। तो एक प्रकार से थी, अरे मूर्ख ये तुम्हारे जीतों में रांड कैसे, तो कितनी बेकूफी है, अब उनको गाड़ी काटने से क्या लाभ होता है, उसका दिल खराब होता है, तो सेवा करने में बात आती है। और कोई कोई तो ऐसा दुष्ट हो है कि स्त्री को मारे, तो स्त्री को मारपीट करनी और भी ज्यादा पाप है, क्यों आपको अधिकार नहीं है कि स्त्री को मारपीट करना। स्त्री के साथ में तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जैसे अपने शरीर के साथ में, क्यों स्त्री अपना आधो अंग है, और शास्त्र क्या है कि स्त्री जो है वो अपने मित्र के समान है, जैसे मित्र के साथ में हम जैसा व्यवहार करें ऐसा ही असली के साथ में करना चाहिए। और पुत्र यदि सवाल को जावे तो उसके साथ के माँ भी मित्र के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। शास्त्र कहे कि लालिये पंच वर्षानी दस वर्षानी तारिये प्राप्त सुसोर से वर्षे पुत्र मित्र समाचरित। पांच वर्ष का लड़का जब तक है तब तक उसका लाड करना चाहिए और पांच वर्ष के बाद और दस वर्ष तक उसको शिक्षा देने के वास्ते और समझो कि आपने ताड़ना करनी चाहिए। और पांच से दस पंद्रह वर्ष बाद बनकर के जो सोलह वर्ष की अवस्था हो जाए तो मैं के साथ में मित्र के जैसे व्यवहार करना शुरू कर देना चाहिए। अठारह वर्ष का हो जाए तब तो वो सवाल की हो गया तो अपने सलाह करके के काम करना चाहिए। अपने कोई भी काम करे तो अपने पुत्र से राय कर लेनी चाहिए। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने मंत्रियों से अपने सुग्रीवादी बांदरों से राय कर लिया करते थे, इस तरह से अपने घर के मन सब राय करके काम करना चाहिए। ऐसे ही अपने स्त्री की सम्मति लेकर के काम करना चाहिए। तो ये अपना सनातन धर्म है। कोई भी पुरुष एक प्रकार से थी है तो उसको जो कर्तव्य है कि स्त्री को सत्कार कर लू। मैं सत्कार को नाम ही पूजा आय शास्त्र के माँ मनुष्य के माँ स्त्री की पूजा करनी। पूजा को मतलब जो नहीं है कि फल पत्र पुष्पों से, तो किससे पूजा करनी कि आभूषणों से और वस्त्रों से। तो आभूषणों से और वस्त्रों से पूजा करने को तो मतलब सत्कार से। तो स्त्री ने अपने आभूषण देना वस्त्र देना बल्कि रुचि की माफक अपनी और शक्ति के अनुसार। बल्कि तो रुचि और अपनी शक्ति नहीं है तो कहां से देंगे। तो बैंक की रुचि और अपनी शक्ति इसके अनुसार बैंक को सत्कार कर लो, बैंक को आदर कर लो, ये ही बैंक को एक प्रकार से सेवा पूजा है। तो शास्त्रों के बीच के मत तो सारी बातें आ जाती है। तो पुरुषों का भी कर्तव्य और स्त्रियों के बीच में जैसे बहू का कर्तव्य वैसे सास का भी कर्तव्य। सास को तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि जो बहू जो है अपने घर में आई है तो अपने घर वालों को छोड़ करके आई है, अपनी शरण आई है, तो अपने लड़की से भी बढ़कर मैं को आदर करे, सत्कार करे। एक प्रकार से आप तकलीफ पा दे किन्तु बहू ने कभी तकलीफ नहीं देवे और मैं को कभी अनादर नहीं करे, बना कभी गालियां तो काटे ही नहीं। जो सासू गालियां काटती है वो जीते हुए संसार में अपमानित होती है और उसकी बहू जब उसकी चलती होती है बहू की तो एक प्रत्यक्ष उसको दंड मिलता है बहू के द्वारा और मर करके वो सासू नरक को जाती है। तो इसलिए अपने बहू के साथ में बड़ा प्रेम का व्यवहार करना चाहिए सासों को बड़ों को। और जैसे विधवा जो माता बहन है उनका ये कर्तव्य है कि अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो मैंने सब यम नियम और बतलाए थे उनका पालन करना चाहिए। और पांच जो व्रत बतलाए थे, पांच जो नियम बतलाए थे उनका पालन करना चाहिए। और समझो कि ऐस आराम स्वाग सुखिनी का एकदम त्याग कर देना चाहिए और वैराग से रहना चाहिए, वैराग से त्याग पूर्वक रहना चाहिए। त्रिलोकी के ऐसे जी को भी मिट्टी के समान समझ करके, धूल के समान समझ करके बहुत त्याग कर देना चाहिए। जैसे महात्मा लोग जैसे दस लोग एक प्रकार से संसार में विचरते हैं ऐसे संसार में विचरण करना चाहिए, बड़ी सादगी के साथ में रहना चाहिए। और भोजन भी को आपने सादगी के साथ होना चाहिए। जैसे आपने लोगों के स्वाभाविक की जो भोजन है दाल है भात है और एक प्रकार से रोटी फलका ये सब जैसे अपने भोजन है सात्विक भोजन है। जो साग वगैरह के मसाला है वो कुछ रास्ती है और तामसी भोजन तो अपना है ही नहीं। और यदि हो तो तामसी भोजन से तो दूर ही रहना चाहिए। तामसी भोजन क्या है कि जैसे लहसुन है प्याज है या कोई बासी रोटी है, जैसे बासी में लोग खावे राबड़ी रोटी तो वो तामसी चीज है। इसी प्रकार से थी जो तामसी भोजन नहीं कभी करना चाहिए। और अपवित्र जो भोजन है मांस वगैरह वो तो महातामसी है और जूठे जो भोजन है वो भी है तो तामसी है। ये तामसी भोजन का लक्षण भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में बताया है। यातयाम गति परिशुद्धन तेत उची समय चावेद भोजनम ताम से प्रियम यातयाम माने जो अधपक्के हो दो अर्थ उसका हुआ एक यो भी अर्थ हुआ कि एक पर जिसको बीज जाए ऐसे जो कच्चो भोजन है वो यातयाम कहते उसको गतसन जिसको रस चले हुए हुए माने जैसे बिजाओं की गुल्ली है बिल्कुल तेल निकाल ली जावे तो वो एक प्रकार से तामसी भोजन हो जावे उसी माने जो दुर्गंध वाले चीज है लहसुन प्याज इत्यादि वो सो जो की दुर्गंध वाली जो चीज है वो तामसी भोजन है याद क्या प्रश्न पूछी परिषित और परिषित वाले बासी आज को जो बनाई वो भोजन काल के लिए जो है वो एक प्रकार से तामसी हो जावे और उचित माने जो किसी को जूठे भोजन हुए वो ऐसा तामसी हो जाए परिस्थिति और जो कोई एक प्रकार से अपवित्र हुए माने जैसे मांस वगैरह माने अपवित्र शास्त्र वर्जित तो वो ऐसा तामसी भोजन है ये तामसी आदमी प्रिय लगे तो एकदम ही ऐसा त्याग कर दे उनकी तामसी भोजन को राष्ट्रीय भोजन को विशेष मसाला नहीं खाना चाहिए और समझो कि सात्विक भोजन भी राशि बन जावे मैंने मिठाई के रूप में बनाने से तो मलाई जो है अपने मिठाई जो है और मिष्ठान और मेव जो है ये चीज भी एक प्रकार से उद्माप पैदा करे इस वास्ते विधवासी जो है उसको भी त्याग कर दे रहे अब सादगी भोजन करना सादा कपड़ा पहनना और मोटा कपड़ा पहनना लील और मील को त्याग कर देना और भूमि में शयन करना या दरी बिछा करके या कमल बिछा करके चटाई बिछा करके ज्यादा से ज्यादा हो तो तख्त पर सो जाओ किंतु खटिया के ऊपर और गिद्धों के मां नहीं गिद्धों के ऊपर नहीं सोना चाहिए और एकादशी पूर्णिमासी के दिन उपवास करना चाहिए भगवान को व्रत करना चाहिए इससे अपने जीवन बिता हूँ की तो यह बात कह रहे हैं कि भाई ये नियमों का पालन करना चाहिए अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य परिग्रह यमा ये पांच यम मान महाभारत है सब देश में सब काल में सब समय के बीच में इनको पालन करना चाहिए सभी देश में सभी जाति में मैंने किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए कभी नहीं करनी चाहिए कहीं नहीं करनी चाहिए किसी निमित्त को लेकर के हिंसा नहीं करनी चाहिए इसको नाम अहिंसा सत्य बोलना चाहिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए मैंने किसी निमित्त को पाकर के झूठ नहीं बोले किसी काल में और कभी किसी देश में झूठ नहीं बोले अहिंसा सत्य अस्त कभी चोरी नहीं करे किसी की भी चोरी नहीं करे अहिंसा सत्य और ब्रह्मचर्य को पालन करे सब प्रकार से मिथुन को त्याग करे कभी असली के साथ विषय भोग इत्यादि नहीं करे और असली पुरुष के साथ में नहीं करे विधवा से पुरुष के साथ में नहीं करे ब्रह्मचर्य को पालन करे और संसार का जो परिग्रह है भोग सामग्री को एकदम त्याग कर दे हुए बस शरीर निर्वाह मात्र के लिए अन्न को भोजन करे ये पांच महाव्रत है तो ये विधवाश्री के लिए और पुरुषों के लिए वृक्ष के लिए साधुओं के लिए महात्माओं के लिए और ब्रह्मचारी के लिए दानपस्ती के लिए और उत्तम गृहस्थियों के लिए ऐसे ही पांच नियम है सो संतोष सदस्य आ जाए इस बेदाना नियमा माने समझो कि सदाचार और शुचाचार से थी बार की पवित्रता सोच और जो कुछ आकर के मिल जाए उसी में आनंद मानो यो संतोष और अपने धर्म के पालन पर तत्पर हो तप और पुस्तकों को धार्मिक पुस्तकों को अनुशीलन कर लो स्वाध्याय और ईश्वर की भक्ति कर लो भजन ध्यान कर लो यो ईश्वर परिधान ये पांच नियमों को पालन करना चाहिए इसी तरह से यम नियमों को पालन करते हुए उसने विद्वान अपना समय बिताना चाहिए और समझो कि घर के वहां सेवा करनी चाहिए घर के मे तीन में रहो कि ससुराल में रहो जहाँ कहीं रहना हो सेवा कर करके भोजन करे घर को काम करे बिना भोजन नहीं करना चाहिए ये नियम लेना चाहिए नहीं तो उसको तिरस्कार भी हुए और कभी भी सत्कार नहीं हुए اور دوسرا میں وہ صرف باہر چڑھا دوسرا کو تو آپ نے صرف باہر نہیں چڑھانا چاہیے. جیسے آپ کا سیما براہمنی نے رکھا تو اس نے 20 روپے کو مہینوں بھی دیوا اور رسوئی بھی بنے جیوا اور جو اس نے ان بستر لے کر کے بھوجن ماتر لے ہوئے اور سب جو روپیہ نہیں لے ہوئے تو اس نے وہ بڑو بھاری تیاگ کرو. میں تیاگ سے ان کی آتما شدھ ہو گئی کہ ان کی مکتی ہوئے اور گھر والا سب خوش رہے ایک پرکار سے کہ دیکھو ایک پرکار سے سارے گھر کو کام یا کرے. تو اس پرکار سے جیون آپ نے جیون بتانا چاہیے اور اپنے پرشن کو یو کرتے رہے اسنیا کو یو کرتے رہے کہ میں بدوا کے ساتھ کہ وہاں بہت آپ نے سیوا کو بھاؤ تیاگ کو بھاؤ ادارتا کو بھاؤ اپنے رکھنا چاہیے. بدوا سے ہر ایک پرکار سے سکھ پہنچانا چاہیے. دکھ کی بات ہے شوق کی بات ہے جہاں کہیں آپ نظر اٹھا کر کے دیکھو کہ جو بدوا جو ہو جاتی ہے اس کو نہ تو پیر میں سکھ ہے نہ سسرال میں سکھ ہے. سسرال کے بیچ کے وہاں پر کوئی کوئی تو اس پرکار کی اس کی دشا ہو ہے ہم پرتکش میں دیکھتے ہیں. آپ کو ناؤ تو نہیں بتلاتے ہیں کنتو دیکھتے ہیں کہ روز ایک دو سی سمجھو کہ ہمارے پاس میں آتی ہے روتی ہوئی شکایت کرتی ہوئی. کل بھی دوست یہاں آئی تھی میں نام آپ کو نہیں بتلاؤں گا. ایک پرکار سے یہی آ کر کے روتی ہے کہ کوئی تو کہتی ہے کہ ہمارا جو گہنوں جو ہے جس کو ہمارے دیور پار رہ گئے کوئی کہتی ہے کہ ہمارا گہنا ہمارے سسرے پار ساسو پار ہے جو دیور نہیں ہے. ایک پرکار سے کوئی کہتی ہے کہ ہمارے بھائی پا بجائی پا رہ گئے. کوئی کہتی ہے کہ ہمارے بیما کا روپیہ جو میرے پتی جو ہے سو کرا گئے تو میں روپیہ ہمارے گھر والا ہی رکھ لیا. کوئی کہہ رہے کہ اس پرکار سے گوڈے کا روپیہ جو ہے وہ بھی ایک پرکار سے گھر والا جم کر گیا جمع کر کے واپس نہیں دیتے ہیں. کوئی کہتی ہے کہ میرا خاص اصلی دھنیش جی کو ایک پرکار سے جم گھر والا کر گیا. تو اصل کے ماں جو واسطو کے ماں اصلی کی گھر میں جو پانتی حصے جی کو تو ہے ہی پر بہ کے علاوہ وہ اس کو خاص دھن ہے. ایک تو یہ برے نیک کا جو روپیہ ہے گوڈے کا یہ اور ایک بار وہ پتی جو ہے سو اس کے نام کے اوپر مرتی وقت کے ماں بیمہ کا روپیہ کر لیا باپ ہے. اور ایک اصلی نے خود جو کوئی اس کا پیتا دیا ہے ماں یا سسرال میں پیر میں جو کچھ روپیہ بنے دھن ملے ہوئے گہنوں ملے ہوئے کپڑوں ملے ہوئے روپیہ ملے یہ خاص اصلی دھن ہے. اس خاص اصلی دھن کے اوپر بات جب تک جیتی رہے ہوئے تب بھی کسی کو ادھیکار نہیں ہے. نہ ایک پرکار سے میں پتی کو یہ ادھیکار ہے اور نہ ساس سسر والے گھر والوں کو نہ پیر والوں کو نہ ساسر والوں کو. وہ اس کی خاص سمپتی ہے. قانون سے بھی گورنمنٹ کی قانون سے بھی میں کو پورا ادھیکار ہے اور ایشور کی قانون سے بھی اس کو پورا ادھیکار ہے. ایسی بدھو آشری کو جو ایک پرکار سے دھن ہے جس کو ہڑپ کر کر کے اس نے جو نہیں دیوے کوئی تو وہ گھور نرک کے بیچ میں جاوے. تو ہر ایک بھائیوں بہنوں کو اس کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایک پرکار سے گو سارا کا روپیہ اس سے بھی بڑھ کر کے ہے. وہ گو سے بھی بڑھ کر کے ہے. 100 گواں کی آپ سیوا کرو اور ایک ودھوا استری کی سیوا کرو تو ایک ودھوا استری کی سیوا سے بڑھ کر کے ہے. اور جو سواگنا استری ہو کر کے ودھوا استری نے گال کاٹتی ہے تو اس ودھوا استری کے ہردے کے ماں سمجھو کی آگ جلتی ہے اور وہ اس وقت میں سانپ دے دیتی ہے کہ تم بھی میرے جیسی بن جائی تو اس کا سانپ بھی ایسے موقع کو لگ جایا کرے ہے. تو ہر ایک سواگنا استری کو اس بات کو دھیان رکھنا چاہیے کہ بدھوا سے کبھی دکھ ہے تو نہیں دینا چاہیے اور بدھوا کے دھن کے اوپر کبھی بدنیت نہیں کرنی چاہیے. تو ایک پرکار سے ہم پرتکش دیکھ رہے ہیں کہ بدھوا استری کو اب وہ بدھوا استری بےچاری کہاں رکھے. یا تو اپنا روپیہ ہے چیز ہے کہ گہنا ہے اپنے ماں باپ کے پاس میں بھائی اور بجائی کے پاس میں. ماں باپ ہو تو ماں باپ کے پاس میں وہ مر جا ہو تو بھائی بجائی کے پاس میں اور سسرال میں رکھے تو ساس سسر کے پاس میں. ساس سسر جی مر جاوے ان تو سمجھو کہ گھر کے ماں جو جیٹھ ہے دیور ہے جٹھانی ہے انہی کے پاس میں تو وہ رکھے اور بھائی اس کو ہڑپ جاوے تو سمجھو کہ ایک پرکار سے رکشک ہی بھکشک ہو گئی. تو بڑی دروسا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بدھواستریوں کو एक प्रकार से बहुत अस्थियों को बेचारे को खाने के लिए रोटी नहीं, पहले नहीं, कपड़ा नहीं, पीर में जाओ तो पीर में वो तो तिरस्कार, शास्त्र में जाओ तो शास्त्र में तिरस्कार, वे कहाँ जाओ एक प्रकार से थी, तो उसको बड़ो भारी एक प्रकार से उन्हें दुख पहुंचाने वालों को पाप लगे। तो आप यो कर्तव्य है कि हर प्रकार से मैं की सेवा करनी चाहिए, और मैं धन की जिस तरह से अच्छी रक्षा हुए ऐसी तजवीज करनी चाहिए, एक प्रकार से ऐसी तजवीज करनी चाहिए कि ऐसे स्थान के मां वो जमे रहे कि चाहे ब्याज कम उपजो, कि जैसे बंक में रहे, जैसे एक प्रकार से थी कोई ऐसे उच्च कोटि के अच्छे धनी आदमी हुए कि रुपया वाला भी हुए और एक प्रकार से सब आपसे सामर्थवान हो, ऐसे बगैर धन की सुरक्षा करनी चाहिए हर एक प्रकार से थी। और उसके हाथ में भी रखना चाहिए, तिजोरी में रखे तो तिजोरी की चाबी, तिजोरी को अधिकार बैसरी के हाथ में ही रहे, मैं तो गांव में अधिकार में रहे, मैं रुपया बैंक कपड़ों में अधिकार के बीच के मां रहे, क्योंकि आगे जाकर के सासु ससुर के दिल में तो फिर भी भाव है, आगे जाकर के तुम जो कि जो देव जेठ हुए, जेठ जिठानी हुए और उसे बना वो कैसे भाव रहे, पीर के बीच के मां माँ बाप जीव है तब तक तो उनको दिल बहुत ही ठीक रहे, आगे जाकर भाई को भाई को कैसे हो, उनकी कैसी दशा हो, गरीब हो जावे तो दिल रहता हो अभी नहीं दे सके, ऐसी स्थिति भी हो सके, तो हर प्रकार से थी समझो कि अपना धन की अपेक्षा भी मैं धन की विशेष रक्षा करनी चाहिए। अरे समझो मैंने कोई बात की तकलीफ नहीं रहे, दुख नहीं हुए उसको, इस बात को बेसिक ध्यान रखने के अधिक ध्यान रखना चाहिए, ये अपना कर्तव्य होना चाहिए। और समझो कि विधवा माता बहन को तो खुद इस बात को ख्याल रखना चाहिए कहीं उच्च बन नहीं जाऊं, आपने यह जो एक प्रथा है ये प्रकार से जैसे आपने पूर्व के जमाने के बीच में घर के माँ कोई मर जा तो जवान आदमी भी मर जा तो घर के माँ तो भी एक से वहां कथा होती, एक इसलिए कि शिक्षा के लिए समझो कि महाराज युधिष्ठिर अर्जुन भीमसेन ये पांडव जो था अर्जुन को पुत्र 16 वर्ष को या एक जवान अवस्था के बीच के वहां मरे तो अभी बंधु तो राजा युधिष्ठिर ऋषियाना बुला करके रोज कथा सुनता तो उसको अच्छा प्रभाव पड़ता। ऋषि लोग कहता कि हे राजन एक प्रकार से थी अभिमन्यु शोक करने की योग नहीं है, इसकी दुर्गति नहीं है, सदगति हुई है, इस वास्ते इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शोक करने से उसकी आत्मा में दुख पहुंचे, जैसे ही मैं की आत्मा हुए इस वास्ते दुख नहीं करना चाहिए। तो अपने लोगों में एक बुरी रिवाज है कि कोई भी घर के मां मर जावे और बाहर का जो आदमी आवे तो बने रुवावे, तो यह बहुत बुरी बात है, एक प्रकार से रोना और काम बिल्कुल बंद करना चाहिए, नहीं कम तो कर ही देना चाहिए, और वो कम एक प्रकार से उत्तम शिक्षा से ही हो सके है, और उसको कोई उपाय नहीं है, बाल कैसे यहाँ तक उसको ज्यादा रुवाती है तो यो एक प्रकार को पाप है कि मैं की आत्मा ने जिस तरह शांति मिले मृतक की आत्मा ने, मैं की आत्मा ऐसी चेष्टा करनी चाहिए, इस प्रकार को आत्मा उसको व्यवहार करना चाहिए। अस्त्रियों की शिक्षा की बात कही, साथ साथ के वहां पुरुषों की शिक्षा भी संक्षेप से कही गई, और ये जितनी जो बातें हैं सुनी जाती है ये उसको काम में लेने की चेष्टा करनी चाहिए। इतना प्रेस की पुस्तक हरेक भाई को अपने घर में रखनी चाहिए, मुझे बच्चों भी कोई पढ़ ले वे और असर में कोई थोड़े भी हो जावे तो अपने घर को सुधार हो सके। वर्तमान के बीच के वहां अपने समझो की देश में अपनी जाति में और अपने स्त्री पुरुषों के बीच के मां जो उत्तर माने आगे जाकर के जो खराबी आ रही है बहुत ही प्रकार से खराबी आ रही है, तो इसके सुधार के लिए विशेष आवश्यकता है, तो सुधार हो सके सत्संग से सुधार हो सके सब कुछ के संग से। दूसरा उपाय है कि सदाचार से, तीसरा उपाय है कि शास्त्री जो पुस्तक है उसके पढ़ने से, धार्मिक पुस्तकों पढ़ने से, तो गीता प्रेस में जितनी पुस्तक सब धार्मिक है, उसमें कोई एक राजनीतिक पुस्तक नहीं छापी जाती, उसमें फालतू पुस्तक नहीं छापी जाती, कोई ब्लीच सिगरेट के प्रचार की, छिनवा के प्रचार की नहीं छापी जाती। जो ये अपने मादक वस्तु को जो सेवन है, छिनवा इत्यादि को देखना है, ये महान एक प्रकार से समझो कि अंदर सही से बहुत भारी खराबी फैल गया बात सोच कर करके, और इसका संस्कार नष्ट हो इसके वास्ते अपन धार्मिक पुस्तक पढ़नी चाहिए और इसको अभ्यास कर लो चाहिए, ये पुस्तक हमें पढ़ानी चाहिए। नहीं तो एक प्रकार से लड़कों में उसंगता पैदा होकर के अपना देश नष्ट भ्रष्ट हो सके है। जो बात कही गई उसको काम में लाने की चेष्टा करनी चाहिए, यही प्रार्थना है। एक घंटा और आज सत्संग अधिक बढ़ानी चाहिए, तो रोज 9 बजे तक की टेम आज 10 बजे तक की जाए। नारायण 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 श्रीमन नारायण यण श्रीवन नारायण नारायण श्रीवन नारायण नारायण सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुदन शिवाले की जय।
कावित्री सत्यवान की कथा एवं विद्वान का स्वागत स्वयं शिक्षा विषय के व्याख्यान बुसरे जयदेव जी का द्वारा आज मिट्टी शाम शुक्ला दशमी को प्रातःकाल 8 बजे गोरखपुर साहब घनश्याम दास जी जालान के मकान पर दिया गया।